किन्नर वो समुदाय जिसे शायद समाज अपना हिस्सा मानता ही नहीं है। पता नहीं हम क्यों भूल जाते हैं कि किन्नर हमारे इतिहास की रचना के एक प्रमुख स्तंभ रहे हैं। फिर वो चाहे महाभारत रही हो या कोई और कथा, राजघरानों में तो किन्नर कला, शिक्षा, ज्ञान एवं दर्शन के प्रतीक माने जाते थे। वो कला एवं ज्ञान के ध्वजवाहक आज कहाँ हैं? युद्ध के रणनीतिकार आज कहाँ हैं? गाहे बगाहे अब वो कई चौराहों पर दिख तो जाते हैं, या जन्म एवं शादी पर बधाई गाते भी दिख जाते हैं, लेकिन इसके बाद कौन सी गली उन्हें अपने अंक में समेट लेती है ये कोई नहीं जानता। सरकारी सुविधा तो छोड़िए, हम इन्हें मानव की श्रेणी में ही गिनना भूल जाते हैं। किन्नर हमारे समाज एवं इतिहास का वो अध्याय है जो जाने कब से बंद पड़ा है। आइए इसे खोलें, आइए कोशिश करें इस दबी प्रतिभा की घुटन को महसूस करने की। पता नहीं क्यों हमने एक खुशबू को दुर्गंध युक्त डिब्बे में बंद कर दिया। हमें आभार व्यक्त करना चाहिए आदरणीय डॉक्टर शीला डागा जी का, जिन्होंने खुशबू को अर्थ दिए, शब्द दिए, पहचान दी और इसे एक पुस्तक किन्नर गाथा का रूप दिया। ये सब शायद यूं ही नहीं हो गया। आदरणीय डॉक्टर शीला डागा जी, जिनकी शिक्षा का स्तंभ गुरुकुल रहा है, इसलिए उनका व्यक्तित्व संस्कृति एवं अध्यात्म की मिट्टी से गढ़ा गया है। ऐसी शख्सियत से ही उम्मीद की जा सकती थी कि वो हमारी याददाश्त के उस तार को छेड़ दें जिसकी झंकार हम भूल चुके हैं। आइए जाने सनातन के उस पृष्ठ को जिसे स्वरूप दिया है संस्कृति की आवाज ने।
नमस्ते मैम, कैसे हो आप?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हमेशा की तरह स्वस्थ और मस्त।
ईश्वर आपको हमेशा ऐसे स्वस्थ और मस्त रखे मैम, हम आपसे ऐसे ही खूब सीखते रहे अच्छी अच्छी बातें।
थैंक यू
मैम। आपने किन्नर वर्ग के अस्तित्व को लेकर बहुत कार्य किया है, आप सामाजिक सरोकारों से भी जुड़े रहे हो और आपकी पुस्तक किन्नर गाथा प्रकाशित हुई और काफी प्रसिद्ध और चर्चित भी रही, तो आज हम इसी पर चर्चा करें मैम, क्योंकि स्त्री विमर्श पर और पुरुष विमर्श पर तो काफी कुछ लिखा और कहा गया, पर किन्नर विमर्श पर मुझे लगता बहुत कमी बात की जाती है। तो जब हमें पता चला कि आपकी ये पुस्तक है, तो चुभन पर, क्योंकि आप मैम हमारे कार्यक्रम सुनते होंगे, हम लोग ज्यादातर ऐसे कार्यक्रम बनाते हैं अपने जो अछूते संदर्भ हैं, जो जिन पर बहुत काम नहीं हुआ है, तो ये विषय हमको ऐसा लगा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए।
बिल्कुल, मैं ऐसा है, धन्यवाद भावना
जी,
मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि तुम इस विषय को लेकर के उत्सुक हो, और चुभन टुडे जो तुमने नाम रखा हुआ है
जी जी,
उसी से ये संकेतित होता है कि कुछ ऐसे ही मुद्दे तुम लोग उठाते हो
जी जी बिल्कुल।
तो और चूंकि वो चीजें चुभती हैं तभी हम उस बारे में कुछ बोलते हैं।
बिल्कुल मैम,
और मैंने तो भाई, मैं तो तुम्हें क्या बताऊं, मैंने तो स्त्रियों पर, जो भी स्त्री क्या किसी पे भी जहाँ कहीं अन्याय हुआ
जी जी,
जैसे घरों में नौकरों पे या कहीं भी, मैं जब से मुझे होश संभाला तब से मैं आवाज उठाती रही
जी।
इवन मैंने अपने पिताजी से भी, मेरे पिताजी के सामने कोई बोल नहीं सकता था
जी जी,
तब भी मैं उनके सामने घर में कोई ऐसी बात होती थी तो मैं माँ के लिए या भाभी के लिए तो मैं बोल देती थी
जी,
मैं बोल थी शुरू से।
वो तो आप अपने पहले कार्यक्रम में हम देख चुके हैं कि क्रांतिकारी व्यक्तित्व रहा है आपका मैम।
हाँ, किन्नरों के बारे में तो ये हुआ ना कि मैं असल में मैं जोक्स वगैरह बहुत सुनाती रहती थी
जी जी,
शुरू से हंसौर प्रकृति की हूँ तो स्वाभाविक है कि
जी
मुझे मजाक वगैरह बहुत पसंद है, और मैं हर बात पे कैसे भी मजाक हो जाए ना तो मैं बुरा मानती हूँ और मैं मजाक कर लेती हूँ
जी,
तो बस ऐसी मैं वो किन्नरों के भी कुछ मैंने जोक्स सुन लिए, चुटकुले सुन लिए थे, और मैं उनकी नकल, मैं नकल बहुत लगाती रही हूँ, तो मैं उनकी भी नकल लगा लगा के उनके जोक्स सुनाया करती थी, उनके चुटकुले। तो उन चुटकुलों से, क्योंकि चुटकुले भी जो भी सुनाए जाते हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ यथार्थ होते हैं।
जी बिल्कुल।
तो मुझे ये लगता था कि अरे किन्नरों को तो कुछ, इनमें तो क्षमता ही नहीं, कुछ नहीं है
जी।
और फिर ये क्या कैसे करेंगे, इन्हें तो ना कोई नौकरी पे रख सकता है ना कुछ और कर सकता, कोई और उनका साधन है। और फिर ये मुझे अभी मैंने देख लिया था कुछ समय से कि किन्नरों को यहाँ शादियों में बच्चा हुआ तो वो आते हैं और मांगते हैं और लोग उन्हें बड़ी हे दृष्टि से देखते हैं।
जी जी।
और दूसरा ये कि जब वो मांगते हैं तो उन्हें लगता है कि अरे इतना कैसे दे दें, यानी लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके शादी में
जी।
लेकिन किन्नर अगर आते तो उनको या बच्चे के होने पे, पर किन्नरों को पूरा नहीं दिया जाता था
जी जी।
और फिर होता क्या था कि वो बहुत ऐसी उल्टी सीधी
हरकतें करते थे,
है ना। तो वो सब देख के मेरे मन में, जब मैंने ये चुटकुले सुनाने शुरू किए तो मेरे मन में ये आना शुरू हुआ कि इन लोगों को फिर खाने को कहाँ से मिलेगा जब इन्हें कोई नौकरी पे नहीं रखेगा।
जी जी।
तो मुझे बहुत बुरा लगता था ऐसी। फिर इधर अब कुछ दो तीन तीन चार साल पहले मैंने कुछ किन्नरों पे किताबें पढ़ी, पढ़ने का मुझे शौक है
जी।
तो मुझे इनके ऊपर किताबें मिली, तो सबसे पहले तो मुझे शायद वही मिली, मैं लक्ष्मी मैं हिजड़ा, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की। वो मैंने पढ़ी, उससे बहुत आंखें खुली। और उसके बाद एक तीसरी ताली और पढ़ी मैंने, उससे और आंखें खुली। तो इस तरह करके मैंने कुछ कुछ इनके बारे में पढ़ा तो मुझे ये लगने लगा कि इन लोगों पे काम होना चाहिए
जी।
और मैं वहाँ वाणी प्रकाशन से मेरा जुड़ाव रहा है, मैं काफी समय से वहाँ कुछ कुछ काम भी करती रही हूँ। तो एक दिन अरुण जी के पास बैठी थी
जी,
और किसी बात पे चर्चा चल रही थी। मैं उन्हीं दिनों ये किताबें मैं पढ़ रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा कि भाई इन पे कुछ काम होना चाहिए
जी जी।
वो बोले मैं भी सोचता हूँ काम होना चाहिए, हुआ नहीं है। साहित्य में किन्नर विमर्श बहुत कम है ना।
बिल्कुल जी।
12-15 कहानियां ले दे के और 4-6।
मैं यही आपसे जानना चाहती थी मैम कि क्या साहित्य में, संस्कृत साहित्य या हिंदी साहित्य, इनमें बहुत कम काम हुआ है किन्नरों के ऊपर?
कहीं भी नहीं हुआ, वो उसका कारण और है। संस्कृत साहित्य में जो काम नहीं हुआ ना
जी,
संस्कृत साहित्य में किन्नर शब्द तो बहुत आया है।
अच्छा।
लेकिन वो यक्ष नाग, यक्ष गंधर्व, किन्नर ऐसे एक साथ आया है। और ये जातियां थी, तो ये नाचने गाने वाली जातियां थी, इनका काम ये था, नाचते गाते थे ये लोग।
अच्छा, मतलब जेंडर से मतलब नहीं था उसमें?
ना ना, ये जो आजकल जो किन्नरों के का एक वो बना हुआ है कि ये इस तरह के हैं, और जो लोगों के मन में उनके लिए उनका एक पूरा व्यक्तित्व बना हुआ है ना
जी जी,
वो सब कुछ नहीं है वहाँ, तो बड़ा सामान्य है।
अच्छा।
अंग्रेज आए उससे पहले हमारे यहाँ भारत में कुछ नहीं था किन्नरों के बारे में।
अच्छा।
बस ये था कि राजाओं के महलों में जरूर ये बात थी कि किन्नर रहते थे, अंतापुर में ना
जी,
अंतापुर के जो उनके चपरासी जिसे कहते हैं, प्रतिहारी कहते थे।
हाँ, जी जी बिल्कुल,
प्रतिहारी होते थे। तो वो होते थे कई जगह ये ऐसे लोग,
मतलब वो रानियों के पास भी चले जाते थे और राजा के पास भी, पुरुषों के पास भी जाते थे और स्त्रियों के पास भी, है ना।
हाँ हाँ, तो वो राजाओं को डर नहीं था ना कि वहाँ पे कहीं कुछ गलत होगा।
जी जी जी।
तो उस तरह के उल्लेख तो मिलते हैं
जी।
लेकिन वैसे किन्नरों के बारे में सबसे पहला उल्लेख जो है वो ईसा पूर्व दूसरी तीसरी से सातवीं शताब्दी के बीच में बादशाहन के कामसूत्र में मिलता है।
अच्छा। जी,
सबसे
जी।
पहला उल्लेख
जी।
और वो उल्लेख भी कोई निंदित अर्थ में नहीं है, कहीं भी निंदा के अर्थ में नहीं है। उन्होंने उनके काम व्यवहार को लिखा है, क्योंकि सारे बादशाह का काम सूत्र जो है उसमें काम व्यवहार के बारे में ही है ना
जी,
सारा
जी।
तो उन्होंने इनके बारे में भी लिखा है
जी।
और वो लिखते हैं वहां पर कि उन्होंने वहां उसी में विविधा तृतीया प्रकृति
जी
स्त्री रूपिणी पुरुष रूपिणी
जी
तृतीया प्रकृति नाम से उन्होंने इनको संबोधित
द्वितीया प्रकृति
तृतीया प्रकृति
तृतीया प्रकृति अच्छा
हाँ की दो प्रकार की तृतीया प्रकृति होती है
जी
एक स्त्री रूप और एक पुरुष रूप
अच्छा
हाँ
जी जी
तो ये है भी वही बात है लगभग 80% तो ये पुरुष होते हैं
जी
और 20% स्त्रियां
स्त्री होते हैं जी
हाँ
जी जी
तो बस इस तरह का वो है उल्लेख इसके
यानी दूसरी से तीसरी शताब्दी के में ही इनका उल्लेख आया है पहली बार आप कह रहे हैं साहित्य में ईसा पूर्व
दूसरी काम सूत्र में
जी जी
उल्लेख तो आ गया लेकिन उसके बाद साहित्य में कहीं ऐसा कुछ नहीं मिलता इनके बारे में
जी
कि किसी को निंदा गर्हित वो हो या किसी भी तरह का कोई अपमानजनक या कोई उल्लेख ही नहीं क्योंकि वो जन सामान्य जैसे सब रहते थे वैसे ही भी रहते ऐसे लोग भी रहते थे उसमें
तो कह सकते हैं कि आज के समय से प्राचीन भारतीय समाज में किन्नरों की स्थिति अच्छी थी मैम
हाँ हाँ बिल्कुल अंग्रेजों के आने से पहले तक बिल्कुल ठीक थी
कारण क्या कहा जा सकता है क्यों स्थिति
चर्च जो था वो समलैंगिकता को और इन सबको के प्रति चर्च में चर्च अच्छा नहीं मानता था उसको तो जब ये अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने किन्नरों के लिए भी वो इसको जैसे समलैंगिकता को या फिर कोई भी ऐसा काम होता था तो वो इनको बड़ी तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे
जी जी
और अगर इनकी हत्या भी हो जाए ना यूरोप में
जी
तो उसको कोई अपराध नहीं माना जाता था
अच्छा जी
तो जब ये अंग्रेज यहाँ आए भारत में
जी
तो उन्होंने यहाँ भी ऐसी किन्नरों से इस तरह से व्यवहार करना शुरू किया ऐसी इन लोगों से
जी
और धीरे धीरे उनके कारण से धीरे धीरे समाज में किन्नरों का के प्रति तिरस्कार बढ़ता चला गया और जब उन्होंने देखा कि लोग हमको इस तरह और इन्हें जो कोई बुराई हो चोरी डाका ये वो कुछ भी कोई गलत काम हो तो वो किन्नरों पे लगा दिया जाता कि इन्होंने किया होगा
जी
इस तरह की जब बातें होने लगी तो स्वाभाविक है कि ऐसे लोगों को फिर परेशानियां शुरू हुई
जी
और धीरे धीरे समय के साथ साथ इन लोगों ने अपना अलग एक वो चुनना शुरू कर दिया रास्ता बनाया और धीरे धीरे फिर ये रास्ते बनते चले गए
कह सकते हैं इनका एक अलग समाज ही बन गया बिल्कुल इन लोग मुख्यधारा से कट गए जी
बिल्कुल पूरा उनका तो समाज बना हुआ है पूरा
जी
जिनका कल्पना भी नहीं कर सकते कि किस तरह का है तो इस तरह से वो इनका जो एक अलग इनका जो इनकी जो का मनोविज्ञान है ना
जी
इनकी सबसे बड़ी जो समस्या है वो इनका मनोविज्ञान है उसको समझने की जरूरत है अगर ये समझ लिया जाए जैसे पहले था कि इतना कोई ध्यान नहीं देता था ठीक है बच्चा कुछ भी कर रहा है अपने कई कई भाई बहन होते थे कोई बच्चा ज्यादा कोई लड़की लड़कों की तरह सज रही है कोई लड़का लड़कियों की तरह सजता है तो किसी को क्या फर्क पड़ता है घर में बच्चे ऐसे ही बड़े हो जाते थे
जी जी
और बहुत और शादियां भी ऐसी होती थी ऐसे बच्चों की अगर माँ बाप देखते थे कि उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है लड़कों में लड़कियों में लड़के का
जी
वो भी वो क्या करते थे वो शादी कर देते थे कि अरे शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा फिर वो औरतें सारी जिंदगी भुगतती रहती क्योंकि कोई बोलता था नहीं इस विषय में
जी
और आज तक भी आज तो बहुत ऐसे केसेस आ रहे हैं लेकिन लड़कियां बड़ी जागरूक भी हो गई हैं और बड़ी साहस भी आ गया है लड़कियां छोड़ देती हैं
जी
लेकिन शादियां आज भी हो रही हैं ऐसे लोग कहीं कहीं
जी जी
तो ये इनकी वो है सारी प्रॉब्लम समस्या
यानी कह सकते हैं कि हमारा जो तानाशाही ढांचा था या अंग्रेजों के आने से और हमारे रीति रिवाज ये भी इनकी दुर्दशा का कारण बने
हमारे अपने रीति रिवाज तो उस तरह के नहीं थे
जी जी
अंग्रेजों ने जो इनको सजा देनी शुरू की और इनके ऊपर सारे आरोप दोषारोपण करना शुरू किया चोरी चार चोरी चारी का और इस सब का कई तरह के किसी भी तरह करते होंगे, तो उसकी वजह से उसका वही कारण था कि इनकी का इन्होंने अपने अलग घर बसाए, अपनी अलग स्थानों पे इन्होंने अपना बसेरा किया और फिर उनके समूह बनने शुरू। जितना मैंने देखिए भावना जी, जितना मैंने पढ़ा है और जितना मैंने जाना है
जी,
जितनी मैंने खोजबीन की इनके बारे में शोध किया है, उससे मुझे मैं इस निष्कर्ष पे पहुंची।
क्या मैम हमारे वेद पुराण इन ग्रंथों में भी आया है कुछ इनका वर्णन?
नहीं नहीं, इन ग्रंथों में कुछ ऐसा नहीं है। क्लीव शब्द आया है
जी।
क्लीव माने नपुंसक
जी,
क्योंकि इसके किन्नरों के संदर्भ में देखा जाए तो कई हैं शब्द, षंड षंड क्लीव पंड नपुंसक ऐसे शब्द आए हुए हैं अमर कोश में। जैसे जब तृतीया प्रकृति के पर्यायवाची हैं तो उसमें ऐसे शब्द आए हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसा है नहीं कोई बाकी पर। और वेदों में तो केवल एक बैल के लिए, बैल के वंध्यकरण के लिए उस तरह से कोई शब्द है, बाकी कुछ नहीं।
अच्छा मैम, महाभारत में हम लोग देखते हैं विरहन्नला का जो प्रसंग आता है, जो अर्जुन बनते हैं विरहन्नला।
हाँ, अब देखो एक बात है
जी,
वहाँ भी देखो, वहाँ किसी तरह कोई निंदा परक प्रसंग नहीं।
नहीं नहीं, एक अच्छे कलाकार के रूप में, मतलब राजकुमारी को वो सिखाते हैं, कलाकार के तौर पे वो जाते हैं महल में जी।
शिखंडी भी तो है।
हाँ, शिखंडी भी है जी।
मैं तो वो वहाँ पे यही, तो शिखंडी के लिए ये फायदा तो उससे लिया गया कि भाई वो स्त्री है ना पुरुष है।
बल्कि मुझे लगता है कुशल कूटनीतिज्ञ के तौर पे इनका इनको समझा जाता था शायद उस समय, कुशल कूटनीतिज्ञ के तौर पर इनको देखा जाता था।
एक ऐसा तो मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कूटनीतिज्ञ के रूप में
जी,
लेकिन बस वो अपना उनका अपना स्थान था और लोग स्त्री पुरुष का अपना स्थान था, पर बिल्कुल जैसे सामान्य स्त्री पुरुष रहते वो रहते थे
जी जी।
ऐसा था कोई और कोई अलग से, मतलब कोई विशिष्टता की दृष्टि से कुछ नहीं। ऐसा था, ये जरूर था कि जैसे शिखंडी का जब प्रसंग आया है
जी,
तो ये हुआ कि भाई वो स्त्री है ना पुरुष है, तो उसपे मतलब वो स्त्री के रूप में भी है और पुरुष के रूप में भी, तो पता नहीं चलता, तो भीष्म उस पे बाण नहीं चला सकते
जी जी जी।
चुकाई तो बस इतना सही है, इसके अलावा कुछ नहीं।
तो कोई हंसी का पात्र हो, कोई मजाक का हो, ऐसा कुछ नहीं है जी।
ना 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 ना, और देखो कलाकारिता कलाकार के रूप में तो सामने आया ही है
जी,
विहनला के रूप में तो मतलब कलाकार ही सामने आया ना।
बिल्कुल कलाकार जी।
हाँ, कहानियां हैं जरूर इसमें, रामायण में, रामायण में के उत्तर कांड में कहीं कहानी है
जी,
लेकिन वो भी यहाँ किन्नौर एक जगह है
जी जी,
तो वहाँ किन्नौर के रूप में है, वहाँ कहीं की शिव और पार्वती थे, वहाँ पर शिव ने पार्वती के उसके मतलब अपने एंजॉयमेंट के लिए, एक अजीब टिपिकल कहानी आती है कि उन्होंने सबको वहाँ पर स्त्री रूप दे दिया, जितना कुछ था वहाँ पर
स्त्री रूप में कर दिया सबको।
हाँ, सबको स्त्री रूप में कर दिया।
अच्छा,
तो भाई वो क्या हुआ कि वहाँ पर्वत पर अब वो एक राजा वहाँ एक पहुँच गए
जी,
राजा इल नाम था, एल या इल
जी जी,
वो घूमते थे पर्वत पे पहुंच गए, तो उनको भी स्त्री बना दिया गया
जी।
अब राजा को जैसे ही मतलब उसे पता चला, तो वो शिव से प्रार्थना करने लगे कि मुझे पुरुष रूप दीजिए
जी।
इस तरह की ये कहानी इसमें है, मैंने अपनी उसमें दे रखी है ये कहानियां
जी जी।
जो भी मुझे जो भी कुछ इनके बारे में किसी भी तरह का थोड़ा सा भी प्रसंग मिला, वो सब मैंने इस पुस्तक में दे रखा।
इसके अलावा आपने किसी ग्रंथ में, आपका तो विशेष अध्ययन है सारे ग्रंथों पर, आपने किसी वेद पुराण या किसी भी ग्रंथ में नहीं इनका वर्णन देखा?
नहीं नहीं, जितना मैंने ढूंढा उतना कहीं मुझे कुछ मिला नहीं
जी जी।
केवल एक व्याख्यान का काम सूच और इसके उत्तरकांड में, और उत्तरकांड का भी ये कहते हैं कि वो बाद में जोड़ा गया है, चाहे जो भी हो प्रसंग में, बात में मैं नहीं जाती हूँ स्वाद विवाद में
जी जी।
और महाभारत में है बिहन्नला और
महाभारत में तो काफी लंबा प्रसंग है बिहन्नला का जी,
प्रसंग है पूरा और
जी बिल्कुल। यानी कह सकते हैं मैम कि आज के समय में जब इन्हें बिल्कुल ही मनोरंजन या हे दृष्टि से देखा जाता है तो कह सकते हैं कि आज इनकी हालत ज्यादा खराब आधुनिक काल में हुई।
बहुत खराब हालत है, बहुत ही खराब। सबको ये लगता है कि इतने पैसे मिलते हैं और सचमुच जो इनके गुरु और नायक होते हैं
जी,
एक गुरु होता है एक नायक होता है
जी जी,
तो इन लोगों को सारा पैसा सारे ठाट बाट उन्हीं के हैं, उनकी बात को कोई टाल नहीं सकता कुछ नहीं। और पता है जब ये कोई किन्नर इसमें शामिल होता है
जी,
वो इनकी एक प्रथा बड़ी खराब है जिसे कहते हैं निर्वाण
जी।
वो वहां पे जब ये जाते हैं, जरूरी तो नहीं है सारे इनके साथ घराने हैं, घरानों में ही कहीं ना कहीं बस शामिल होते हैं जो जहां जिस घराने में शामिल हो, जो भी अपने मतलब इधर उधर से जाके जो व्यक्ति उनमें मिलता है अपने समाज में जाके
जी जी,
तो उसमें भी वो उनकी इच्छा के बिना वो कुछ नहीं कर सकता
जी।
और फिर इनकी रीतियां हैं, इनके रीति रिवाज हैं कि कैसे उसे शामिल किया जाएगा, तो वहाँ यहाँ तक है कि वो उसका जैसे पुरुषांग काट देते हैं
जी जी,
और कहते हैं और खून बहने देते हैं कि ये पुरुष का खून निकल जाएगा और जो नया खून बनेगा वो स्त्री का बनेगा। इस तरह मतलब इतनी मैं सोचती हूँ कि
क्रूरता है ये जी जी,
जबरदस्त क्रूरता है
जी बिल्कुल। और क्या क्योंकि हम लोग बचपन से ही देखते आते हैं कि ये लोग आते हैं शादी ब्याह में या घर में कोई बच्चा हुआ तो बस नाच रहे हैं गा रहे हैं और फिर पैसे लेने के लिए लड़ाई झगड़े और यही सब। हालांकि इनसे कोई झगड़ता नहीं, सब इनको खुशी खुशी देते हैं जो भी ये मांगते हैं, क्योंकि इनका श्राप ना मिले ऐसा भी लोगों को थोड़ा डर होता है हमारे समाज में। जी समाज में हमारे बना हुआ है ऐसा कि इनसे कोई श्राप ना लो।
नो, रामायण में एक कहानी उसका ये भी प्रसंग है
जी,
कहीं
जी
राम के बारे में
जी जी,
कहीं कि क्या हुआ कि राम जब वन में जा रहे थे
जी जी,
सारे लोग इकट्ठे हुए
जी,
तो उसमें कुछ किन्नर भी थे
जी,
तो उन्होंने कि नर लो नर और नारी ऐसे कह के उन्होंने
वो चले जाएं जी जी,
सबको अपने अपने काम उनको वो कहा कि आप ऐसे करना अपने अपने कामों में, ये काम करना वो काम करना
जी।
तो कहते हैं कि वो जो किन्नर थे उन्हें कुछ कहा नहीं क्योंकि वो तो बीच गए थे
जी, जी, जी।
और राम ने कोई नाम नहीं लिया उनका
जी।
तो वो जब राम वहां से 14 साल बाद लौटे, राम का जब स्वागत किया गया तो उस समय उनके ये उनको ये दिखा कि कुछ किसी ने बताया कि ये ना आप कुछ बता के नहीं गए थे तो ये तब से यहीं आस पास
14 साल तक खड़े रहे वहीं पर जी।
हाँ, तो राम ने उन्हें ये आशीर्वाद दिया, सब इतर से वरदान दिया कि तुम्हारा आना, तुम लोगों का कहीं भी जाना मंगलकारी माना जाएगा
जी।
तो इस तरह से करके उनका वहां पे ये तब से ये कहते हैं कि उनका जब कोई बच्चा हो तब और जब विवाह हो तब उनका आना मंगल
जी जी
कारी माना जाता है। और उनके
आशीर्वाद कहानी किसी ग्रंथ में आई है, रामायण में आई है ये कहानी?
रामायण भाई वाल्मीकि रामायण में तो मुझे नहीं दिखी
जी,
मतलब लेकिन ये पुराने जो बाद के ग्रंथ है ना
जी जी,
जैसे अब आप एक बात देखिए ना कि रामायण में तो सीता परित्याग की भी घटना नहीं है
जी जी।
उत्तर रामचरित 7वीं शताब्दी में भारवी एक नाटककार हुए हैं बहुत अच्छे
जी।
और उत्तर रामचरित नाटक संस्कृत का बहुत ही प्रसिद्ध करुण रस का नाटक है
जी।
उसमें कई कुछ समझ ये आए हैं कुछ प्रसंग
जी।
तो ऐसे और नाटकों में जो राम कथा पे, क्योंकि राम कथा पे हमारे यहाँ बहुत साहित्य लिखा गया, राम कथा और रामायण और महाभारत को उपजीव बना करके उनमें से प्रसंग ले ले करके हमारे यहाँ संस्कृत साहित्य में बहुत ग्रंथ लिखे, बहुत से काव्य ग्रंथ लिखे गए। तो ऐसे ही कहीं पे ये भी एक वो है
जी,
ऐसे कहीं पे कोई कहानी आई है
जी,
जो मैंने आपको बताई कि अभी ये उन्होंने कहा कि ऐसे तुम लोगों को मंगलकारी माना जाएगा
जी जी।
बस इतना सा है ये, और इसके अलावा बाकी कुछ नहीं।
और वो जैसा मैम आपने कहा कि उन्होंने अपना एक अलग समाज बना लिया और उनके जो नायक होते हैं, तो उस वजह से मैं देखती हूँ कि आजकल कई तरह की मतलब बहुत गलत भी होता है। जैसे ये लोग जाते हैं तो इतना जबरदस्ती करके बहुत ज्यादा पैसे मांगने, किसी की हैसियत से अधिक हजारों लाखों में मांगते हैं ये लोग, और
भाई,
जिद
अगर
करके
वो
लेना।
गुरु और सुन्नत,
इस
हाँ,
तरह की
गुरु
चीजें
और
आजकल
सुन्नत,
बहुत होती हैं, मैंने देखा समाज में।
हाँ, भाई अभी मैं जब ये किताब लिख रही थी, किन्नर
जी जी
गाथा लिख रही थी, तो मैं मिलने गई कि जितना भी पैसा मिलता है वो गुरु और नायक के पास वो तो ज्यादा मिलता है,
जी
जो सामान्य किन्नर है उनको तो नहीं मिलता,
जी जी
उनको तो बहुत कम मिलता है, और जितना मिलता भी है इनको वहां जाके देना होता है, जो
जी
इनके हाथ में भी आता है वो इन्हें वहां जाके देना होता है, अगर ये स्वतंत्र रूप से भी कहीं होंगे तो,
अच्छा
और निकलते भी हैं, उनसे कोई जरूरत होती है तो मतलब उनको भेजा जाता है कि जाओ पैसे जमा करके लाओ। तो जैसे आजकल आपने बहुत लोगों ने देखा होगा, मैंने तो देखा है कि ट्रेन में आजकल भीख मांगने के लिए वो मांगने के लिए आ जाते हैं,
जी जी
तो मान लीजिए 100 रुपए जमा हुए एक
जी
किन्नर के पास, तो किन्नर जब अपने जो इनके मैंने कहा ना 7 खानदान है इनके, तो
जी जी
जो इनका घर है जो जहां भी, और बस्तियों से बड़ी दूर दूर इनके घर होते हैं, मतलब जो इनका समाज है वो वैसे बस्तियों से दूर ही है,
तो ये गलत चीज नहीं है मैम, इनको एकदम समाज की मुख्य धारा से काट के रख दिया गया है।
हाँ बिल्कुल अलग, बिल्कुल कटे हुए हैं मुख्य धारा से।
अब महाभारत की अभी हम लोग बात कर रहे थे, तो शिखंडी जो है वो महल में ही रहते थे, और ऐसा कुछ
हाँ
भी नहीं था कि उनका कुछ अलग था।
भाई, मुस्लिम जब आए हैं तो मुस्लिम्स में भी यहाँ पे कभी कोई सूबेदार है, कोई तो, और मतलब कुछ ऐसे ऐसे उनसे हैं वो पदों पे।
जी मैंने मुस्लिम शासन में भी थोड़ा सा मैंने जो पढ़ा मैम, मैंने यही देखा कि वो हरम तक चले जाते थे जहां रानियां होती थी, फिर उसके बाद वो राजा के पास जाके उनके संदेश देने, और इस तरह से मतलब काफी उनको बुद्धिमान भी माना जाता था, और कहीं पे भी जाने पर उनके कोई प्रतिबंध नहीं होता था।
भाई जहांगीर था, उन्होंने उसको फौजदार बना रखा था,
जी
हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपने किसी को सैन्य कमांडर और सलाहकार नियुक्त कर रखा था,
अच्छा
हाँ, ऐसी शाहजहां
जी मैम, थोड़ा सा
सुल्तान
इतिहास,
की,
मैम थोड़ा सा इतिहास का अगर आप बताएं तो अच्छा रहेगा कि कहाँ कहाँ
हाँ
वर्णन आए।
सुल्तान ना,
जी
कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखा है कि राजा को चीजों पे हाथ नहीं उठाना चाहिए,
अच्छा
हाँ, और संस्कृत नाटकों हिंदी उर्दू उपन्यासों के अनुसार भी हिजड़ों को महलों में अंतःपुर में पहरेदारी के रूप में लिखा जाता था, जिससे रानियां और बेगम सुरक्षित रहें। ठीक है, तो एक वो था, वो देवगिरी में गवर्नर भी रहा और अंत में सूबेदार हो गया अलाउद्दीन के समय में।
जी
तो मुसलमान बादशाहों को भी मतलब इनकी वीरता और इनकी ताकत के बारे में पता था,
जी
तो बल्कि कई लोग, कई बार क्या होता था कि कुछ गरीब ना, कुछ गरीब ऐसे होता था तो आजीविका के लिए
जी
वो अपना पुरुषांग कटवा देते थे।
जी किन्नर बन जाते थे।
हाँ ऐसी एक कोई था गुजरात के सुल्तान में भी, किसी ने एक उसको कोतवाल की नियुक्ति दे रखी थी अपने यहाँ।
जी
तो भारतीय किन्नर समाज जो था वो भारतीय समाज में अन्य लोगों की तरह सामान्य जीवन जी रहे थे, लेकिन
जी
बाइबल में भी किन्नरों के लिए एक यूनक शब्द प्रयुक्त हुआ है,
बाइबल में क्या
बाइबल में
शब्द मैम, यूनक?
यूनक,
जी
EUNUCH।
अच्छा
तो मतलब उसके लिए कहा गया है कि मतलब दो, इसमें दो तीन चीजें उन्होंने कही हैं,
जी
एक तो इसका वो जो अर्थ वो बताते हैं, वो तीन चीजें बताते हैं कि मतलब या तो ऐसे कि जिनका पुरुषांग काट दिया गया हो,
जी
या जो बच्चा पैदा करने में अक्षम हो, और तीसरे वो लोग जो अपनी इच्छा से हो जाते हैं।
जी जी
हाँ तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो अच्छा इच्छा से दिखाने के लिए भी ऐसे ही करते हैं,
जी,
कपड़े भी उनकी तरह पहनेंगे, उनकी तरह के हाव भाव दिखाएंगे, जबकि उनका वैसे जो यौन क्रिया उनकी ठीक होती है बिल्कुल।
जी
और बहुत से लोग औषधियों के द्वारा या वैसे भी बन जाते हैं नपुंसक और अपना वो भाव ही खत्म कर देते हैं।
तो मैम जैसे
बहुत से राजा
आप
भी
कह, जी हाँ जी बोले,
बहुत से राजा वैसे अपने सेवकों का करवा देते थे ऐसा, मतलब पुरुषांग कार्ड कटवा दिया।
जी,
ये पाश्चात्य देशों का वो है।
अच्छा जी,
हाँ वहां पे वो तो वो बाइबल जो कहती है वो स्वाभाविक, स्वैच्छिक और किसी अन्य के द्वारा बनाए गए, तीन तरह के उन्होंने
अच्छा
उसमें बाइबल में तीन प्रकार के गुणों का वर्णन है।
जी। और मैम जैसा अभी आपने बताया कि जब आपने किन्नर गाथा लिखी अपनी पुस्तक, तो आप इनकी बस्तियों में गए और इनसे
हाँ
मिले, तो अभी हम लोग जो कह रहे थे कि मनोवैज्ञानिक पहलू पर भी बात होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल नहीं होती है। हम पुरुषों के विषय में बात करते हैं, स्त्री विमर्श पर तो बहुत कुछ कहा लिखा गया, बहुत बात होती है, लेकिन किन्नरों पे बिल्कुल ही नहीं बात होती। तो अगर हम मनोवैज्ञानिक पहलू को नहीं छुएंगे तो वो गलत होगा। मैं उस विषय पर जानना चाहती हूँ कि आपने इन लोगों से बात की तो इन लोगों के अपने दुख दर्द या ये लोग क्या महसूस करते हैं, किसी ने आपके साथ कुछ बातें शेयर की?
असल में क्या है कि जो इनके वो है ना, जैसा मैंने बताया कि
जी
इनके यहाँ तानाशाही है पूरी,
जी
तो जो इनके गुरु और नायक हैं
जी
वो तो क्योंकि उनको सारी सुविधाएं हैं, वो तो
जी
बिल्कुल राजाओं की तरह रहते हैं, तो
जी
बाकियों को बाहर आने क्यों देंगे, है ना।
जी
और
जी
जो अब मनोवैज्ञानिक दृष्टि की मनोवैज्ञानिकता की देखी जाए,
जी
तो मैंने बिल्कुल अभी बीच में पहले शुरू में तुम्हें बताया कि
जी
जैसे उसका लक्ष्मी नारायण का भी मैंने आपको उदाहरण दिया,
जी जी
बचपन से बच्चे जिन जो बच्चे ऐसे होते हैं तृतीय प्रकृति के, तृतीया प्रकृति के जिनको
जी
किन्नर कहा जाता है,
जी
वो जैसे थोड़े से ही बड़े होते हैं ना, 5-6 साल के, तब
जी
से ही उनमें वो प्रवृत्तियां दिखने लगती हैं कि वो जैसे लड़का है तो लड़कियों की तरह सजने की इच्छा होगी उसकी,
जी जी
और लड़की है तो उसकी लड़कों की तरह दिखने की इच्छा होगी, और
जी
उसी तरह वो लड़कों की तरह बोल्ड होगी, सब कुछ होगा,
जी
सब मतलब लड़कों की तरह व्यवहार करेगी वो
जी
ऐसी। पर हालांकि वो केवल 20% ऐसे होते हैं जो लड़कियां होती हैं, ज्यादा सब लड़के ही होते हैं।
जी
अच्छा कईयों के मैंने ये भी बता दिया कि कईयों के अंग पूरे वैसे विकसित होते हैं पर उनमें शक्ति नहीं होती,
जी
तो ऐसी। अब इनके साथ क्या होता है कि जब वो देखते हैं कि भाई घर में उनके भाई हैं, पिता हैं, या जब स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो लड़के जैसा व्यवहार कर रहे होते हैं,
जी
वो अपने को उससे अलग पाते हैं,
जी
और उनका जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो उनका आकर्षण पुरुष की तरफ होता है,
जी
क्योंकि उनमें स्त्री भाव होता है
जी
जो पुरुष किन्नर होते हैं।
जी जी
तो मतलब ऐसे में वो इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, इतने संदेहों में घिर जाते हैं और बड़ी तरह तरह की आशंकाएं उनके मन में आ जाती हैं कि ये हो क्यों रहा है मेरे साथ ऐसा,
जी
देख मतलब मैं हूं तो अपने बिल्कुल इन लड़कों की तरह और मेरे मेरी इच्छा बिल्कुल अलग हो रही है।
जी
तो उस समय उनको बहुत ही सहारे, बड़े सहारे की जरूरत होती है घर में, अगर कोई लोग उसको ऐसा है ना कि जहाँ पे हमारे अशिक्षा भी बहुत है हमारे यहाँ,
जी
और दिमाग में बहुत सी चीजें सोशल स्टेटस और ये भी है ना सबकी, भाई सामाजिक इस तरह से आपका क्या स्तर है और वो सब, तो घर
जी
वाले भी बड़ा अजीब सा फील करते हैं और बच्चे को हर बात के लिए धिक्कारते रहते हैं ऐसे
जी
बच्चों को।
जी जी
तो जिन बच्चों को ऐसे धिक्कार मिलती है और घर का घर से उनको वो नहीं सहानुभूति नहीं मिलती या उनको सपोर्ट नहीं मिलता, तो ऐसे बच्चे फिर इधर उधर भागते हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं फिर। और जब स्वाभाविक है, ये तुम्हें तुम भी समझती होंगी शायद थोड़ा बहुत, तुम
जी
क्या अच्छी तरह क्योंकि तुम तो लिखती भी हो,
जी
तो क्या होता है कि जब बच्चे में इस तरह की भावना, एक असुरक्षा की भावना या तिरस्कार उसे मिल जाए
जी,
तो उसमें कुंठाएं पैदा होती
हैं। बिल्कुल जी।
और वो जो कुंठाएं है ना, उसके व्यवहार को और बदलती जाती है
जी।
फिर वो अपने बहुत ही अपने को असुरक्षित अनुभव करता है, और उसके साथ साथ वो अपने को एक बिल्कुल अलग थलग
जी,
सब भीड़ में भी वो बिल्कुल अकेला होता है।
बिल्कुल जी। यानी घर से ही कोई माहौल नहीं मिलता, अगर घर से उनको शुरू से ही थोड़ा सा उसी तरह से घर वाले व्यवहार करें। लेकिन मैम ये होता है ना, समाज भी हमारा ऐसा है, मान लीजिए घर में माता पिता या भाई बहन उसको उस दृष्टि से नहीं देखेंगे, उसको प्यार सम्मान देंगे तो अगल बगल वाले नहीं रहने देते, ये थोड़ी सी हमारे समाज में कमी है जी।
पूरा समाज, बल्कि मैं कह रही हूँ कि स्कूलों में बड़ी परेशानी है, उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे भी उनके साथी लोग भी करते हैं, उनके साथ उनकी हंसी उड़ाते हैं, और टीचर्स भी उनको अच्छी नजरों से दृष्टि से नहीं देखती है, देखते हैं ना,
पूरा व्यक्तित्व ही प्रभावित हो जाता है जी जी जी।
और इनके बारे में किसी को नॉलेज तो है नहीं कि है मामला क्या है ये सारा
जी।
अभी तक तो लोगों को कुछ पता नहीं था ना
जी,
इतने समय तो
जी,
इतना से शताब्दियां हो गई, 300 साल तो अंग्रेज भी रहे ना यहाँ
जी जी,
तो इतना लंबा समय तो बहुत लंबा समय होता है, और अशिक्षा और सब कुछ, तो इस बीच भारत की जनता जितनी गरीब अशिक्षित अपमानित हुई है अंग्रेजी शासन में
जी जी,
तो उससे वो हमारा सारा ताना बाना ही बिगड़ गया।
कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर चर्चा करना भी हमारे समाज में अभी भी ठीक नहीं समझा जाता।
अरे मैं कहीं एक जगह मैं एक पुस्तकों की दुकान पे
जी,
मैंने कहा कि भाई हिजड़ों पे कोई साहित्य हो तो दीजिए
जी,
तो वो मेरे से मेरा नाम पूछने लगे
जी।
मतलब उन्हें ये लगे कि शायद मैं भी, मतलब मैं क्यों मांग रही हूँ
जी जी,
बड़ी अजीब बात लगी मुझे।
हाँ, जबकि कितना गलत है, अगर हम स्त्रियों पर बात कर सकते हैं, पुरुषों पे कर सकते हैं, तो इन पर क्यों नहीं,
इन पर क्यों नहीं कर सकते
जी।
और मेरा तो मानना यह है कि अगर ये इनके बारे में अब जिस तरह का व्यवहार हो गया है और जिस तरह का ये सारा वातावरण बना है, तो इनके बारे में अभी बहुत काम करने की जरूरत है, सामाजिक संस्थाओं को भी, शिक्षण संस्थाओं में भी कुछ ना कुछ इनके बारे में जरूर पढ़ाया जाए कि ये हम जैसे ही हैं, और मतलब किसी की न उनको का तिरस्कार करना चाहिए ना उनकी हंसी उड़नी चाहिए,
नहीं उनका दिल उनका दिमाग सब कुछ जब हमारे जैसा है तो उनको पढ़ने से तो तिरस्कृत रखा जाए।
और एक बात है, ज्यादातर तो अगर उनको थोड़ा सहारा मिल जाए तो बड़े अच्छे कलाकार हैं वो।
बिल्कुल ठीक कह रही मैम।
अब तो देखो, अब तो इधर काफी समय से मैंने जब ये किन्नर गाथा अपनी लिख के खत्म की
जी,
उसके 10 दिन बाद ही न्यायालय का निर्णय आ गया था।
क्या निर्णय मैम?
तृतीय थर्ड जेंडर मानने के लिए
जी,
मतलब स्वीकृत कर दिया गया था
जी जी,
और इनको सारे अधिकार देने की बात की गई थी कि इनका वो भी बनेगा, इनके आई कार्ड, वोटर आईडी और ये सब बनेंगे और
जी जी। अब तो हो गया है, अब तो ये लोग विधायक और सांसद का चुनाव भी लड़ सकते हैं जी।
हाँ, तो सामान्य नागरिक की तरह
जी,
तो तब इस तरह से मतलब इन्होंने कर वो, अब तो कह दिया, लेकिन अभी तक वो पता क्या हुआ, उससे फायदा जो संपन्न लोग हैं ना
जी,
उनको तो हो गया है
जी, जी।
हमारे बॉलीवुड में भी हैं कुछ लोग
जी
समलैंगिक
जी जी,
अब तो लोग सामने खुल के आ गए हैं, शादियां भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है अब तो
जी,
लेकिन वो लोग जो हैं वो सब ज्यादातर वो संपन्न लोग हैं
जी,
जो अभी भी गांव के स्तर पे या जो निर्धन वर्ग है, इवन जो जैसे मध्यम वर्ग के लोग है ना
जी जी,
उसमें भी मैं सोचती हूँ कि जो उसमें भी अभी इतनी जागृति नहीं आई है इन सब चीजों के बारे में
जी,
और वैसे भी मतलब ऐसे सेक्स के बारे में, काम भाव के बारे में हमारे यहाँ तो बात होती ही नहीं ना बिल्कुल
जी,
तो आप अगर बात करने भी लगो तो लोग मुंह चुरा के इधर से उधर दृष्टि बचा के इधर उधर हो जाते हैं।
जी जी
वो बात ही नहीं करना चाहते इनके बारे में
जी।
इसलिए मेरा मानना है कि हमें बचपन से ही माँ बाप को भी ये सामाजिक संस्थाएं हैं उनका ये बड़ा काम है, उनको ये करना चाहिए कि वो लोगों में ये जागृति पैदा करें कि इन बच्चों के प्रति उनकी सहानुभूति, माँ बाप भी सहानुभूति रखें, माँ बाप उनको जैसे। और इसमें भाई एक बात देखो, जो बच्चे बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते, अपंग हो जाते हैं जन्म से
जी,
माँ बाप उन्हें भी तो पालते हैं
बिल्कुल
है, तो ऐसे बच्चों को तो जिन वो जबकि उनका बड़ा बड़े होकर के वो तो और अच्छा सहारा बन सकते हैं।
बल्कि मैं तो मैम सहानुभूति भी क्यों इनको दी जाए, बल्कि ये तो हमारी तरह है तो सामान्य रूप से जिए जैसे हम जी रहे हैं।
हाँ बिल्कुल
जी,
अलग होना ही नहीं चाहिए कुछ। जब इतने सालों से भाई तीन जब अंग्रेज आए हैं उससे पहले हमारे समाज में कोई अलग थलग नहीं था कुछ।
जैसे देखिए मैम पुरातन काल में आप लोग तो आपने तो इतना ग्रंथों पर अध्ययन किया तब आप ज्यादा जानते हैं कि स्त्रियों की दशा इतनी अच्छी थी, लेकिन क्या हुआ कि कुछ मुगलों के आने से और जो भी वजह बनी तो क्या हुआ कि स्त्रियों को एकदम एक उनके प्रति सहानुभूति, वो बेचारी हैं वो कुछ कर नहीं सकती, एक इतना ज्यादा ये चीज बन गई कि आज मतलब स्त्रियों को बिल्कुल एक अलग उस तरह से देखा जाता है, उनके विषय में एक अलग तरीके से बात की जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सारे कार्य स्त्री पुरुष एक समान ही कर सकते हैं।
सारे स्त्री पुरुष का वही जाति व्यवस्था की बात है
जी।
भाई जाति व्यवस्था में भी तो यही हुआ ना कि भाई आपने जो
आरक्षण का किया जी जी,
जिसे आप आज दलित कहते हैं
जी,
वो सेवक वर्ग था उसके लिए भी हमने यही व्यवहार किया
जी,
कि उन्हें बिल्कुल नीचा उनके जैसे वो तो मनुष्य ही नहीं है, इस तरह से हमने उनसे व्यवहार किया
बिल्कुल
अछूत समझ करके। गांव में भी बिल्कुल पता है एक निश्चित दिशा में, शायद दक्षिण दिशा में या किधर की तरफ गांव में उनके घर वहां होते थे
जी जी,
जिससे वहां से हवा भी ना आए इधर की तरफ,
इतना तिरस्कार जी।
हमने इतना अमानवीय व्यवहार किया है
जी, लेकिन मैम कि अब उनको आरक्षण देकर अब उनको एकदम हमने अलग ही कर दिया है, अब आरक्षण देने से भी तो उनका एकदम अलग तरह का एक वो बनता जा रहा है ना, एक समाज में रोष की भावना भी पनपती है दूसरे सामान्य वर्ग में और इनके बीच में।
ऐसा है कि देखिए ये संक्रांति काल का कहा जाता है
जी,
संक्रांति काल होता है जब कोई समाज में इस तरह के बदलाव आते हैं, परिवर्तन आते हैं, तो एकदम से तो हो नहीं जाएंगे
जी जी।
तो उसमें क्या होता है कि जब इतने समय से जो वर्ग सहन कर रहा होता है तिरस्कार
जी,
उसको जब मौका मिलता है तो उसमें से बहुत से बड़े विरोधी जो ज्यादा भावुक होते हैं वो उग्र हो जाते हैं, एक तरह से क्रांतिकारी जैसे से
जी, है ना जी बिल्कुल।
तो वो कुछ जैसे उन्हें ये लगता है कि इन्होंने अब तक ये लाभ लिया तो अब हम भी लें इनसे, बदला जैसे बदले की भावना उनमें आ
जी जी,
विरोध के।
पर क्या है मैम कि जो भी हमें अधिकार मिलते हैं चाहे कानून से या समाज से या किसी भी तरह, तो उनका आधार लिंग नहीं होना चाहिए, मुझे जहां तक लगता है इससे तो और असामान्य जी जी असमानता आ जाती है।
अगर वो नहीं होगा भाई, स्त्रियों के लिए तो उठाया ही जा रहा है
जी,
तो अब तो किन्नरों के लिए भी यही बात उठानी चाहिए, हालांकि स्त्रियों की संख्या बहुत है, स्त्रियां तो 50% है
बिल्कुल,
लेकिन ये तो लाखों की संख्या में है, बस उससे ज्यादा मतलब कुछ लाख है किन्नर ना
जी जी,
लेकिन कुछ लाख भी है तो वो देखो एक बात की उनमें जो क्षमताएं हैं, जो उनमें एक तरह से मैं सोचती हूँ कि जो उनमें कला की संभावनाएं हैं
जी जी,
वो सब तो बिल्कुल सारी खत्म हो जाती है। बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो हम जिनकी कला से जिनके उनसे हम कुशलता से
जी
हम वंचित रहते हैं
बिल्कुल, हम कला के तौर पे उनको क्यों ना देते जी।
हाँ माँ बाप के लिए भी ये एक बहुत बड़ा बड़ी हानि है इस तरह से
जी,
क्योंकि लड़के लड़कियां लड़की को तो आपने शादी करके लड़की भी चली रही लड़का भी चला गया
जी,
अब अगर ऐसा कोई शादी नहीं कर रहा बच्चा
जी जी
तो वो आपके पास ही रहेगा और उसमें क्योंकि क्षमताएं तो है, आपने सहारा दिया तो वो कहां से कहां पहुंच जाएगा।
बिल्कुल
हर तरह के, अब आजकल तो ऐसे बहुत कहीं देखो मध्य प्रदेश में तो बहुत हुआ है ना कि मेयर भी बनी।
हाँ जी बिल्कुल, अभी हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक किन्नर वर्ग के एक किसी व्यक्ति को बनाया, विधायक का दर्जा दिया।
हाँ हाँ
जी, पर मैम हम लोग जो जी
राजनीति में भी आ गए ना,
बिल्कुल आ गए जी बिल्कुल।
1998 में
जी
शबनम नाम की, शबनम मासी नाम की
जी, शबनम मासी जी जी,
हाँ उन्होंने पहली बार राजनीति में
जी,
पहली भारतीय किन्नर थी जिन्होंने एमएलसी के लिए चुनाव लड़ा
जी,
और उन्होंने हिंदुओं के साथ भेदभाव के लिए आवाज भी उठाई
जी। तो मैम हम लोग जो अभी बात कर रहे हैं कि इनका एक अलग ही समाज बन जाता है, और घर की बात जो हमने की कि घर में इनको ऐसा व्यवहार मिलता है जिस वजह से ये लोग ऐसे हो जाते हैं, तो ये तो घर की बात की कि माता पिता हैं वो इनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं क्या। लेकिन हम एक चीज मैंने और भी देखी सुनी है, हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि अगर ऐसा कोई बच्चा घर में पैदा होता है तो इस वर्ग के लोग आते हैं और उसको बिल्कुल छोटे से बच्चे को उठा के अपने साथ ले जाते हैं, और माता पिता कुछ बोल भी नहीं पाते कि नहीं भाई तुम ना ले जाओ, क्योंकि वो तो देना ही देना है उनको। ऐसा भी होता है?
सुना मैंने भी था
जी,
हालांकि मैंने उनसे बात की तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, हम लोग नहीं लेते हैं जबरदस्ती, और ये तो माँ बाप ही दे देते हैं क्योंकि माँ बाप को ये अजीब लगता है कि ये बड़ा होके हमारे हमें शर्म आएगी इसके साथ।
अच्छा, तो हो सकता है मैम अब ये चीज थोड़ी कम हो गई हो, जैसा आपने कहा कि समाज में जागरूकता आई है, तो
हाँ।
हो सकता है कम होता हो या शहरों में महानगरों में कम होता हो, लेकिन मुझे लगता है कि गांव देहात में और आज से 15-20 साल पहले शायद होता होगा इस तरह से।
हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ बल्कि इनको भी आरक्षण मिलना चाहिए ना
जी,
और वर्गों की तरह अब किन्नरों को भी आरक्षण मिलना चाहिए
जी,
उनकी
जी।
शिक्षा के लिए भी उनका प्रबंध होना चाहिए, स्कूलों में भी उनके लिए अलग से थोड़ा सा कुछ न कुछ अलग करना, मतलब एक मैं सोचती हूँ कि सबको उनके प्रति सहानुभूति सबके मन में आए और उनको कुछ सुविधाएं मिले।
नहीं तो मैम मैं ये मतलब मुझे एक ये चीज बहुत अंदर से दर्द देती है, तीस होती है सोचकर कि कोई बच्चा है भाई वो लड़का है तो वो भी अपने घर में माता पिता के साथ हमेशा रह सकता है, शादी विवाह उसका करे ना करे उसके ऊपर है, फिर भी वो रहेगा अपने घर में। कोई लड़कियां हैं तो वो भी अपने घर में रहेंगी, शादी हो गई तो चली गई, नहीं की तो अपने घर में। लेकिन इन लोगों के साथ ऐसा क्योंकि इनको बचपन से ही उस घर से एक तरह से उनको निकाल दिया जाता है, इस तरह का व्यवहार होता है, तो क्या उनके दिल में इस बात की चोट नहीं पहुंचती होगी? यही मतलब उनकी सारा उनका व्यक्तित्व प्रभावित होता होगा इस तरह की बातों से।
असल में क्या है कि समाज में जो इनके बारे में धारणाएं बनी हुई है ना
जी,
तो ज्यादातर उनकी हंसी उठती है।
हाँ,
और उपहास का पात्र कोई बने तो उनको अच्छा लगेगा क्या?
बिल्कुल नहीं।
तो होता यही है कि फिर ये लोग अपने ही उसको, क्योंकि इनका समाज अलग बना हुआ है और इनके रहने के स्थान वो सब है, सब बने हुए
जी,
तो ये लोग उन्हीं में मिलने की कोशिश करते रहते हैं जाके
अपने को एक जी जी।
लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी अंत में मिल तो गई उन्हीं में ही,
बिल्कुल
लेकिन वो फिर भी उन्होंने तो बहुत ऊंचाई हासिल कर ली, डांसर बहुत अच्छी है वो
जी,
तो देश विदेश में बल्कि एड्स के उसके लिए भी
हाँ, जी जी,
और इनकी वजह से एड्स बहुत फैला ना
जी,
तो कई अगर समाज में ये बिल्कुल स्वाभाविक रूप से रहने लगेंगे लोग
जी,
और समाज इन्हें बिल्कुल तृतीय प्रकृति या थर्ड जेंडर के रूप में इन्हें स्वीकार कर ले
जी,
और लोग समझने लगे इनके बारे में, तो फिर बहुत सी समस्याएं हल हो जाएंगी इनकी
जी
सारी लगभग। हालांकि इतना आसान नहीं है, वो जो इनके गुरु नायक हैं वो छोड़ेंगे नहीं इतनी
जी,
आसान
जी, जी।
कौन अपने शासन को छोड़ना चाहता है, अपनी सुख सुविधाओं को
जी,
लेकिन धीरे धीरे ये भी ऊपर आ जाएंगे।
वही आपके मतलब प्रशासनिक स्तर पर और मतलब कानून का सहारा लेकर ही कुछ हो तो हो और बहुत आसानी से हो जाए, ऐसा मुश्किल ही लगता है। लेकिन मैम आजकल थर्ड जेंडर की बात होने तो लगी है काफी।
हाँ हाँ, राज्य के स्तर पे भी
जी,
मेरा मतलब शासन के स्तर पे।
बिल्कुल,
शासन के स्तर पे तो होनी शुरू हो ही गई है
जी,
पर समाज के स्तर पे भी बात होनी चाहिए ना।
बिल्कुल जी,
जो संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, उनको ये काम, उनके लिए ये ज्यादा बड़ा काम है कि वो ज्यादा काम करें
जी,
क्योंकि जागरूकता तो समाज से ही आएगी ना, सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा।
जी बिल्कुल, सोशल मीडिया भी आजकल इतना एक्टिव रहता है, उसमें काफी कुछ लोग अपना पोस्ट करते हैं, लेकिन मैं जितना मैं देखती हूँ, मुझे आज तक कभी किन्नरों के ऊपर किसी ने कुछ लिखा हो या कहा हो, या थोड़ा बहुत आजकल होने लग गया है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जितना होना चाहिए उतना होता नहीं है मैम।
नहीं नहीं, साहित्य में तो ये किन्नर विमर्श रहा ही नहीं है, बहुत कम रहा है
ना।
और जब मैंने ये किन्नर गाथा मेरी उसमें छपी थी तो 2020 जनवरी 2020
जी जी
में विश्व पुस्तक मेला जो दिल्ली में लगता है
जी,
उसमें ये इसका विमोचन हुआ था
जी जी।
तो उस समय ये अकेली चर्चित इसीलिए रही क्योंकि ये अकेली ऐसी किताब थी जो इस विषय पे आई
जी।
तो अभी लोगों ने लिखा भी नहीं है और अभी तो लोग स्वीकार भी जल्दी से नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अब आजकल क्या है कि किताबें लोग कम पढ़ते हैं
जी,
तो वो कहने लगे कि अरे ये तो ना हमने सोचा कहानी है
जी, बताइए।
मैंने कहा कहानी नहीं है ये, किन्नरों के बारे में आप जो कुछ जानना चाहें
जी,
हर प्रश्न का जवाब मिलेगा इसमें
जी,
ये ऐसी किताब है।
बिल्कुल मैम, मैं अपने श्रोताओं से भी कहना चाहूंगी कि जो भी सुन रहे हैं लोग, आप इस किताब को मंगाएं और पढ़ें जरूर, बहुत ही अच्छी पुस्तक है मैम। आपने इसके हर पहलू को इसमें आपने छुआ है।
हाँ, कोई पहलू मैंने छोड़ा नहीं है इनमें
जी।
आप मनोवैज्ञानिक भी, सामाजिक भी, इनका पॉलिटिक्स में ये अब कहाँ से कितना, उन्होंने राजनीति में कितना आना शुरू हुआ, या फिर पुराने जमाने में इनकी क्या स्थिति थी, इनका जो ढांचा है सामाजिक
जी,
वो इनके उसके चिकित्सा शास्त्र की दृष्टि से इनका, या शारीरिक दृष्टि से क्या इनकी समस्या है और क्यों ऐसा होता है, वो सब भी जितना मुझे मिल सका
जी,
वो सब मैंने इसमें समाहित कर दिया है अपनी प्रश्न पुस्तक। बहुत बड़ी नहीं है, 112 पेज की पुस्तक है
जी 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 जी।
तो उसमें से भी बहुत कुछ ऐसा भी हो सकता है ना कि जैसे पुराने मैंने जो उदाहरण दिए हैं कि ऋग्वेद में या कहीं पे अथर्ववेद में ऐसा आया, या पुराने उसमें, तो जो आपको ठीक लगे उतना पढ़ो, बीच बीच में छोड़ भी सकते हो। मुख्य
ऋग्वेद में और अथर्ववेद में मैम क्या कह रहे हो, आया है वर्णन?
अथर्ववेद में आया, ऋग्वेद में तो कुछ है ही नहीं
जी।
अथर्ववेद में इनके लिए कुछ नहीं आया है
जी,
अथर्ववेद में तीव शब्द आया है।
हाँ, तीव शब्द आपने बताया जी।
हाँ बस, और वो भी बैल को एक के वंधकरण के लिए।
अच्छा,
बैल को वो बनाया जाए ना
जी जी,
ऐसे आया, बाकी कुछ नहीं आया कहीं भी।
अच्छा, पुराणों में भी नहीं है कहीं, आपने कहा है ना?
ना ना, बस मैंने कहा ना, सब जगह पर जहाँ कहीं भी आया है वहाँ पे किन्नर, नाग, गंधर्व ऐसे ये, बल्कि विद्याधर, अप्सराएं, यक्ष
जी जी,
ऐसे ये 8 योनियां थी, देव योनियां।
अच्छा जी,
तो इन अमरकोश में भी इन देव योनियों का उल्लेख है।
अच्छा,
और ये जो थी इनमें से गंधर्व और किन्नर, यक्ष भी इन्हीं में थे ना
जी जी।
तो जो यक्ष, ये किन्नर और गंधर्व हैं
जी,
ये नृत्य और गायन में कुशल जातियां थी, देवताओं का मनोरंजन किया करते।
बताइए, उस समय कलाकार के तौर पर ही इनका वर्णन आता था, ऐसा कोई लिंग भेद नहीं था जी।
बिल्कुल, और वैसे पुराणों में इधर उधर मतलब ये तो आया है कि कहीं कि ये ब्रह्मा से इनका वो है
जी,
क्लीव शब्दों का प्रयोग होता है, लेकिन मनुष्य योनि के लिए नहीं आया बाबू
जी।
आचार्य चतुर्सेन ने अपने उपन्यास वयम रक्षामा में किन्नर शब्द का कई जगह प्रयोग किया, तो वहां भी उन्होंने किन्नर गंधर्व नृत्य गीत से मनोरंजन कर रहे थे और ये सब
जी जी।
बस उस तरह से आया हुआ है इनका
जी।
अच्छा, अब इनको किन्नर शब्द जो है वो ही इनको पता नहीं क्यों नाम दे दिया गया
जी,
जबकि ये गलत है। मतलब मैं मानती हूँ कि ये किन्नर नाम नहीं देना चाहिए था इनको, तृतीया प्रकृति ही कहते तो ही ज्यादा अच्छा था
जी।
संस्कृत में जहां भी कहीं आया है ना
जी,
किन्नर का मतलब हुआ कि ये कैसा आदमी है, यानी ठीक नहीं है
जी। अच्छा,
संस्कृत में जिस तरह से प्रयोग होता है ना
जी जी,
तो किन किन शब्द अलग है, किन माने क्या,
अच्छा,
और नर माने पुरुष
जी,
तो क्या ये पुरुष है
जी,
जैसे इस तरह का, या ये पुरुष तो एक जैसे एक श्लोक आता है तो कहते हैं कि ऐसा वो मित्र कैसा, कि किम सखा
जी,
जो अपने ऐसा मित्र राजा का किस काम का जो उसको सही सलाह न दे
जी,
तो किम सखा
जी जी,
ऐसा सखा क्यों है
जी।
इसी तरह जो अपनी प्रजा के हितों की बात, जो प्रजा के हितों की बात न सुने वो किम प्रभु हो
जी,
यानी ऐसा राजा भी किस काम का
जी। हम लोग सामान्य बोलचाल में भी कह देते हैं तुम कैसे आदमी हो, ऐसे कह देते ना, वही चीज होती
है। वही वही मैं कह रही हूँ
जी जी।
तो ये नाम भी बड़ा अजीब सा, बस बोलने में अच्छा लगता है तो
जी,
इस तरह से उन्हें वो कह दिया गया है। पुराणों में मतलब किम पुरुष शब्द पुराणों में मिलता है
जी,
लेकिन सब जगह वो कुत्सित मतलब बुरा पुरुष इस अर्थ के कारण से, किन्नरों को तो कहा तो इसीलिए गया है ना
जी जी।
और नृत्य संगीत में इनकी रुचि रहती है, ये भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि किन्नर गंधर्व मैंने बताया कि वहाँ बार बार आया
जी जी।
ये वैसे तो देव योनियों में से एक योनि के लिए प्रयुक्त है, इसको अब इसका ना अब संस्कृतिकरण कहा जा सकता है हम इस बात को, कि उसको आपने उसको नीचे कर दिया शब्द को
जी,
किन्नरों के लिए इस तरह प्रयोग करके
जी।
किन्नर जैसे कि जो पुरुष भी नहीं है, स्त्री भी नहीं है, यानी अच्छा नहीं है
जी,
ऐसे करके
जी जी।
हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में ना
जी,
भक्ति सिंह सीमावर्ती तो आता रहता है, इसमें मैंने देखा, इसमें भी आया है, टीवी पे भी कई बार नाम आया है, किन्नौर एक
जी, किन्नौर हाँ जी
हाँ, तो वो वहाँ के किन्नर कहलाते हैं, वहाँ के लोग पहाड़ी लोग।
अच्छा, चाहे वो पुरुष हो स्त्री, मतलब सबको किन्नर ही कहा जाएगा
वो वहाँ, वो किन्नर पहाड़ी लोग थे जिनकी भाषा किन्नौरी।
अच्छा,
किन्नौरी लोखाली और गलचा ये उनकी भाषाओं के लिए कहा है कि वो किन्नर कहलाते हैं। तो भारतीय जो माइथोलॉजी है उसमें वो जो मैंने तुम्हें बताया ना शिव और पार्वती का
जी,
तो वो कहते हैं कि मतलब वहाँ पे वो उनकी जो वहाँ जो लोग रहते थे उन्हें किन पुरुष और स्त्रियों को किन्नरी कहा जा
रहा। अच्छा, अच्छा।
उत्तरकांड में ना इसके कहीं पे इसके रामायण के
जी,
वाल्मीकि रामायण के
जी
उत्तरकांड में एक कथा है ये।
अच्छा, किन्नौर वाली।
हाँ
अच्छा, वाल्मीकि रामायण में है मैम।
हाँ हाँ
अच्छा,
एक राजा की कथा है, तो उन्होंने वहाँ पे वही वही वो जो कथा मैंने शुरू में बताई थी ना
जी जी,
शिव ने सबको स्त्री बना दिया और सब कुछ
जी,
तो वहाँ जो पुरुष सैनिक स्त्री बने थे
जी,
उन्हें किन पुरुष और किन्नर नाम दिया गया
जी,
और कहा गया कि वो किन पुरुषों से ही विवाह करेंगी जो वहाँ पे बन गई थी, ऐसा कुछ कहानी
जी जी।
और ये मैंने वैसे भी बताया कि ये जो उत्तर कांड है ना रामायण का
जी,
ये बहुत बाद की शताब्दियों में जोड़ा गया।
प्रक्षिप्त भी हो सकता है।
हाँ प्रक्षिप्त है, इसकी बहुत सी बातें मुख्य रामायण से मेल नहीं खाती
जी जी।
वो लिख दिया गया सारा कि सब कुछ हो गया, इसका रामायण पढ़ने का फल और उस कथा का भी फल और वो सब भी हो गया, फिर उसके बाद उत्तरकांड फिर शुरू हो गया तो
जी जी,
तो है नहीं उस तरह का,
लेकिन फिर भी उल्लेख आया है, ये बात हो गई।
हाँ बस उल्लेख इस तरह आ गया है
जी, जी।
तो वो तो कब आया होगा ये पता थोड़ी है
जी,
रिसर्च के विषय होते हैं इनपे, हम वैसे एकदम से बिना रिसर्च किए कुछ कहना मतलब उसके साथ जब तक आप संभावना न लगाए तब तक
जी,
संभवतः न लगाए तब तक उसके साथ न्याय नहीं करेंगे।
बिल्कुल जी,
है ना
जी। अच्छा मैम, जैसे किसी की जब मृत्यु होती है तो शव यात्रा कहते हैं रात को निकलती है, जिसे कोई देख नहीं सकता, और ये लोग हंसकर दुनिया से विदा करते हैं और मौत का मातम भी नहीं मनाते, तो इन सब बातों को, हाँ जी, जब इन सब बातों को मैंने जाना मैम, तो मुझे और भी ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि ये लोग अपने जीवन को इतना अभिशप्त मानते हैं कि अंतिम यात्रा और अंतिम संस्कार भी इतना करते हैं कि जैसे कोई पाप या सजा भुगत कर जा रहे हो, तो ये भी एक मनोवैज्ञानिक पहलू ही हो गया इनका।
हाँ हाँ, वो असल में क्या है कि वैसे तो ये नहीं है कि रात को ही निकलती हैं।
अच्छा,
जैसे सारे जो भी वो निकलते हैं ना लोग
जी
शव लेकर के
जी
शव यात्रा में, तो सब पुरुषों के ड्रेस में होते हैं, तो किसी को पता थोड़ी चलता है कि भाई किसका है।
अच्छा, पुरुषों के ड्रेस में ही होते हैं।
हाँ
नहीं, इसलिए मैंने पढ़ा था कहीं कि इसलिए लोग रात को निकालते हैं कि कोई देखे ना।
पढ़ा है वो,
जी जी
वो मैंने भी पढ़ा है कहीं,
जी जी
तो मैंने दिया भी है इसमें।
अच्छा,
वो मैंने इसमें किताब में, इस पुस्तक में दे रखा है वो प्रसंग, वो सब भी।
जी जी,
तो उसमें ये बात सही है कि वो मातम नहीं मनाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसे तिरस्कृत जीवन से छुटकारा मिलना ही अच्छा है।
हाँ, क्योंकि उनको लगता है कि शायद अगर मातम मनाएंगे तो फिर हमें यही जन्म मिलेगा, और इस जन्म से वो लोग इतना तंग आ चुके होते हैं कि उनको लगता है कि नहीं, हम मुक्त हों इस जन्म से।
हाँ
जी,
और कुछ दिन के लिए जब कोई मरता है तो ये कुछ लोग कुछ दिन के लिए ना उपवास भी करते हैं।
हाँ हाँ, ये मैंने भी, मैंने ये चीज पढ़ी है, एक हफ्ते का शायद उपवास रखते हैं ये लोग।
हाँ, एक हफ्ते तो क्या मतलब कुछ समय का उपवास
जी,
अब कहीं एक हफ्ता भी
जी जी।
असल में किन्नरों से जब बात करो तो वो सही सही बात बताते नहीं है अपने बारे में।
जैसा आपने कहा कि कुछ लिखा ही नहीं गया आधुनिक काल में, तो इनके विषय में कुछ ज्यादा काम नहीं हुआ।
हाँ,
तो
बस थोड़ा बहुत लिखा गया, अब क्योंकि अब खुले में आ गई है बातें
जी,
तो हो सकता है कि अब ज्यादा लिखना शुरू कर दें
जी। इस वर्ग के लोगों को ही आना चाहिए, जैसे लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी या इस तरह के लोग, शबनम मौसी, इस तरह के। तो आपको कुछ जी कुछ गिनतियों में ही ऐसे नाम है मैम, इन लोगों के इनमें से भी कुछ लोगों को आगे आना चाहिए और लिखना चाहिए अपना।
हाँ हाँ
जी। और मैम कोई बात आपकी पुस्तक में हो, और जो आप
मतलब इनके बारे में, वैसे मैम तो इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है
जी जी,
कि जैसे इनकी एक अरावण की कथा है इनकी।
इसकी रावण की?
अरावण,
रावण। अच्छा जी,
देवता है तो इनका मतलब देवता मानते हैं उसको।
अच्छा
हाँ, तो उसमें वहाँ पे ऐसी
जी
देख बता रही हूँ, कहीं ऐसा ही उन्होंने वो किया है, तो कोई मतलब रावण एक कुल था
जी,
तो उसमें ये था कि मतलब एक पुत्र की बलि देनी पड़ेगी युद्ध के दौरान, पांडवों को अपनी जीत के लिए ना माता काली के सामने अपने पुत्र की बलि की आवश्यकता हुई।
अच्छा,
तो रावण एक इनका एक पुत्र था, उलूपी से जब अर्जुन ने शादी की थी ना
जी जी,
तो उस समय उलूपी से जो उसका पुत्र हुआ था वो उसका नाम रावण रखा गया
जी जी।
तो एक दिन के विवाह के लिए कोई रावण मतलब को अपनी कन्या देने को राजी नहीं हुआ, कोई सहमत नहीं हुआ
जी।
वो इस पर कृष्ण ने मोहिनी का रूप धारण किया और रावण से विवाह कर लिया।
किसने विश्व मोहिनी का रूप धारण किया?
कृष्ण ने।
कृष्ण ने, अच्छा जी।
हाँ
जी,
तो मोहिनी रूप में आए और रावण से उन्होंने शादी विवाह कर लिया
जी।
तो दक्षिण भारत में रावण को अपना मूल पुरुष मानते हैं ये लोग।
अच्छा, इनके पूजा पाठ के विधान भी थोड़े अलग होते हैं मैम।
हाँ हाँ, इनका एक ना कुवागम गांव है
जी
तमिलनाडु में।
कौन सा गांव?
कुवागम।
अच्छा,
कुवागम गांव है, वहाँ रावणी मंदिर है।
अच्छा,
उसमें 18 दिन का उत्सव मनाया जाता है, तो देश भर से सारे ये किन्नर पहुंचते हैं
जी,
रावण की कथा सुनाई जाती है, रावण से विवाह करते हैं सब।
अच्छा,
मतलब देवता है वो तो उस तरह ना
जी जी।
और फिर जब वो रावण को अपने प्राण त्याग देता है तो ये हिजड़े फिर खूब नृत्य करेंगे, चूड़ियां फोड़ करके विधवा की तरह विलाप भी करेंगे, नृत्य भी करेंगे, सब करेंगे। मतलब इस तरह की जो इनकी वो है
अच्छा
कहानियाँ
जी
जो, मतलब तमिलनाडु का ये है कि तमिलनाडु में ये परंपरा है
जी। बाकी देश के लोग भी वही पूजा उन्हीं की पूजा करते हैं रावण की ही ज्यादातर।
हाँ,
जी
हाँ सब रावण की पूजा करते हैं
जी।
दो तीन है इनकी, एक देवी भी है जिसकी पूजा होती है इनके यहाँ
जी।
कोई एक जिसका क्या नाम है उसका, कुछ नाम है उसका, मैं नाम तो भूल गई अब
जी।
लेकिन एक देवी है किसी की इनकी
जी जी,
वो है कि अभी बताती हूँ, बहुचरा माता।
बहुचरा माता अच्छा जी।
तो गुजरात की प्रमुख कुल देवी है
जी,
और इनका प्रमुख मंदिर जो है गुजरात के संथोल में है।
अच्छा,
ये किन्नर समाज की इष्ट देवी है
जी,
इसकी पूजा जरूर करता है।
अच्छा जी जी।
तो ऐसे इन्होंने इनकी अपनी धार्मिक वो भी हैं
जी
प्रथाएं, शिव की भी पूजा करते हैं।
शिव की अच्छा जी।
हाँ, अर्धनारीश्वर नटराज के रूप में है ना
जी जी।
तो उत्तर भारत के हिजड़े जो है वो इसी रूप को ज्यादा महत्व देते
जी।
हैं। वैसे माना कहा ये जा रहा है कि ये जितने भी इनके साथ खानदान है ना
जी,
उनने मैंने पूछा भी था किसी से
जी
कि मतलब इनको ये इस्लाम धर्म ज्यादा सबने रखा है।
इस्लाम धर्म क्या नहीं पसंद है?
हाँ, सब मुस्लिम ज्यादा है, अब तो ऐसा नहीं है लेकिन फिर भी मतलब कहा यह जाता है कि ज्यादातर सारे कुंडे जो हैं वो इनके इस्लाम को, मतलब इनके एक तरह से पहले तो इनपे प्रेशर रहता था
जी
कि ये इस्लाम को अपना ले,
अपना लिया आप इस्लाम को।
हाँ हाँ, लेकिन अब क्या है कि अब तो फिर थोड़ा सा फर्क पड़ गया अब काफी
जी,
तो कोई इतना जोर देते नहीं है, लेकिन फिर भी है। इसी तरह पता है इनने भोपाल में एक किंवदंती है कि राजा भोज के शासन काल में सूखा पड़ गया
जी,
तो उन्होंने कहा कि किन्नरों को कुछ एक उत्सव था
जी,
वो करने के लिए कहा, भुजरिया बोलते हैं इसको।
अच्छा,
तो ये उत्सव जो है ये राखी से 12 दिन पहले शुरू हो जाती है
जी।
तो ये फिर सारंगी ढोलक के उस पर मंगल गीत गाते हुए जाते हैं। पहले तो ये परंपरागत पोशाकें पहनते थे
जी,
लेकिन अब सब तरह की पोशाकें पहनने लगे हैं
जी जी।
और लोग ना सौंदर्य खूब सजते धजते हैं उसमें, ये लोग
जी
खूब मेकअप वगैरह करेंगे, तो लोग भी आते हैं इनसे किन्नरों से आशीर्वाद लेने के लिए
जी।
और ये क्या करते हैं कि गेहूं के दानों को ना छोटे छोटे बर्तनों में, जैसे अपने यहाँ जौ के दाने भी उगाए जाते हैं
जी,
इनके यहाँ गेहूं के दाने उगाए जाते हैं।
अच्छा,
और वो जो होते हैं ना वो पौधे
जी,
जो लोग इनसे आशीर्वाद लेने आते हैं वो इनके हाथ से वो पौधे लेते हैं
जी। अच्छा,
तो ज्यादातर गुजरात राजस्थान छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सैकड़ों किन्नर कहते हैं इस उत्सव में
जी। तो सर ऐसा नहीं है कि जैसे जो इस वर्ग के लोग जो मुस्लिम परिवार से जाएं तो वो अपना उनका मुस्लिम धर्म अपनाएं, जो हिंदू धर्म से जाएं वो, ऐसा कुछ नहीं है? इनका एक अपना अलग ही संप्रदाय कह लीजिए बन जाता है।
हाँ हाँ, अब जैसे इससे बात हुई
जी,
तो उन्होंने कहा कि इनकी अब किन्नरों की संख्या अब तो 50 लाख तक तो है, उससे ज्यादा ही है लेकिन इतनी तो है ही है
जी
है?
जी।
और उन्होंने कहा कि 95% किन्नरों का इस्लामीकरण हो चुका है।
अच्छा,
कारण उन्होंने नहीं बताया लेकिन उन्होंने कहा कि इनको ना इस्लाम कबूल करने के लिए बहुत परेशान किया जाता है, तो वो तंग आकर के इस्लाम में शामिल हो जाते हैं
ये। लेकिन ये बात आपको लगती है मैम, आप मिले अपनी पुस्तक लिखते समय लोगों से?
मुझे नहीं, वो लोग कुछ नहीं बताते, वो कहते नहीं, वो कहते कि नहीं नहीं सब कुछ अब हो सकता है ना, ये किसी ने पहले कहीं से मुझे मिला था ये प्रसंग
जी,
तो लेकिन अब हो सकता है, जब उसने बात की तो वो कहते हैं नहीं नहीं सब अपने अपने धर्म के हिसाब से चलते हैं, तो जिसको जैसा जिसकी पूजा करते हैं वो वैसी पूजा करता रहता है।
वही तो जैसा आपने कहा ना कि
अपना है ना, जब देवी देवता की पूजा कर रहे हैं
जी
तो इस्लाम कहाँ से हुए?
बिल्कुल,
देखा जाए तो
बिल्कुल
इतनी कहानियां रावण की आ गई और एक वो उनकी देवी की आ
गई। देवी की जी, और आप कह रहे हो वहाँ पर ये लोग काफी संख्या में जाते हैं, तो फिर कैसे आप कह सकते हो कि 95% हो गए?
जी जैसे बहुत ज्यादा माता है और ये सब है, तो फिर वो इस्लाम कहाँ से रहा?
कहाँ से रहा? बिल्कुल
मैं हो सकता है वैसे भी कह दिया हूँ, कुछ पता नहीं है ना। ये तो लोग बहुत चीजों को ऐसी भी ले लेते,
क्योंकि जिस जो बात को बहुत ज्यादा छुपा कर रखा जाए, ढक कर रखा जाए, तो फिर उसके विषय में ऐसी बातें बन जाती हैं समाज में। जैसा आपने कहा कि कुछ कहा ही नहीं जाता, लोग बात करना भी नहीं ठीक। आपने एक पुस्तक मांगी किसी दुकान पर जाकर, तो आप कह रहे थे आपको उसने बड़े आश्चर्य से देखा। तो ये सारी चीजें हैं मैम, जब जिस किसी चीज की हम बात नहीं करेंगे तो उसके विषय में हमें कहाँ से सारी बातें पता चलेंगी?
ये तो है ही। और क्या
जी,
इनका एक अपना पता है, इनका समलैंगिक जो होते हैं उनका झंडा भी है।
अच्छा।
और इंद्रधनुष के रंगों का होता है।
अच्छा।
हाँ, तो 1978 में अमेरिका में ये डिजाइन तैयार किया गया था
जी।
ऐसे पता है, मतलब इसके वैसे तो किन्नरों को जो यूरोप का मैं बता रही थी ना
जी, जी
मैं भूल गई
जी,
ऑस्कर वाइल्ड
जी
बहुत नामी लेखक हुए हैं
जी जी
पश्चिम के
जी,
और तुमने भी पता नाम सुना होगा
जी जी,
उन्होंने बहुत पुस्तकें लिखी हैं, ऑस्कर वाइल्ड
जी,
और वो उन्हें वो जेल में रहे थे क्योंकि वो समलैंगिक थे शायद
जी,
ऐसा था तो उनको जेल में रखा गया था
जी। जी,
ये मैंने वैसे बता दिया तुम्हें।
यानी यूरोप में भी इनकी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी।
यूरोप तभी तो सबसे बड़ी मुश्किल तो उन्होंने ही पैदा की है यहाँ
जी।
हमारे यहाँ कहाँ था कुछ?
बिल्कुल
हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं था
जी।
अंग्रेजी शासन के पहले
जी
हमारे यहाँ तो सब बिल्कुल ऐसे
सामान्य तौर पर थे ये लोग। बिल्कुल जी,
हाँ बिल्कुल सामान्य लोगों की तरह रहते थे
जी।
तो वो तो मैंने तुम्हें उनका बता दिया ना कि मतलब तो उनको बताओ उनको जेल हो गई थी
जी,
बहुत समय तक जेल में रहे वो
जी।
ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा था कि मैंने कहाँ कहीं लिखा था, पर मुझे याद है
जी जी
उनका मतलब वो कहते हैं ना कि उसको होमोसेक्सुअलिटी को ओल्ड एवं न्यू टेस्टामेंट में पाप कहा गया
जी, पाप कहा गया जी।
हाँ तो इनका था ही ऐसे ही
जी
वहाँ पे
जी जी।
और वे लिखा गया है ना, वो पुरुष जो अन्य पुरुष के साथ लज्जाजनक कार्य करते हैं उन्हें उनकी गलती के लिए उचित दंड मिलता है
जी।
ये जो वो है ना बाइबल वगैरह
जी,
उसमें कहीं इधर उधर कहीं पता नहीं कहाँ लिखा है कैसे
जी।
तो ऐसे ही है मतलब, इन लोगों के यहाँ इन्होंने ही अच्छे वो आए ना ये लोग अंग्रेज
जी,
बात से ही हमारे यहाँ ये सारा हुआ है। हाँ देखो, प्रसिद्ध आयरिश कवि ऑस्कर वाइल्ड को समलैंगिकता के अपराध में कैद करके जेल में डाल दिया गया।
बताइए, अभी भी हम पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण करते हैं जबकि हमें अपने देश के पिछले इतिहास को देखना चाहिए जी।
मैंने लिखा हुआ है ये कहीं
जी,
रोम में हिजड़ों या यूनकों को नीचा समझा जाता था, चर्च समलैंगिकता को अपराध मानता था
जी।
लेबोशियर अमेंडमेंट ऑफ 1885 के अनुसार समलैंगिकता को बहुत भद्दी बात माना गया और इसीलिए आयरिश कवि ऑस्कर वाइल्ड को समलैंगिकता के अपराध में कैद करके जेल में डाला गया
जी। कितना गलत।
हाँ और क्या
जी,
बल्कि और एक जगह किसी मतलब किसी ने लिखा है
जी,
कि भारत में वैदिक काल से ही नपुंसक समाज का हिस्सा थे, बच्चे बूढ़े पुरुषत्वहीन ब्रह्मचारी तृतीया प्रकृति जो संतान उत्पन्न करने में अक्षम थे, इन्होंने समाज में दुल्हन बनाने का कार्य किया
जी।
क्योंकि वैदिक जीवन पद्धति में कोई भी जीव गलत नहीं है ना
जी, बिल्कुल
सभी का अस्तित्व किसी न किसी उद्देश्य के लिए है।
बिल्कुल,
तो ऐसे ही
बताइए, हमारे हमारे पुरातन ग्रंथों में और हमारे इतिहास को अगर हम देखें तो इनके इनके काफी इनको सम्मानजनक स्थिति में देखा जाता है।
सभ्य जी भाई, सभ्य समाज था
जी। बिल्कुल,
ये तो जो असभ्यताएं होती है ना, अभी मैंने एक संपादकीय लिखा था कुछ
जी,
तो राजेंद्र राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने कहा है
जी
कि जब इस तरह से कोई मतलब जैसे अंग्रेजों ने इतना सब छीन लिया हमारे यहाँ से
जी,
इतना सब उन्होंने लूट लिया
जी,
तो यहाँ जो जो गरीबी फैली
जी
अपने भारत में,
जी
तो उस गरीबी के कारण से जो मतलब यहाँ के जो लोग थे ना, तो जो मतलब शासक वर्ग होता
जी
है तो उसके लिए भी तो मुश्किल हो जाती है ना। शासक वर्ग के अनुसार ही जनता चल रही सकती है। देखो
बिल्कुल
ये राजेंद्र प्रसाद ने कहीं कहा हुआ है कि जब राष्ट्र कोई बुरे दिनों में फंसता है तो
जी
उसका क्षय जीवन के किसी एक आयाम तक ही सीमित नहीं होता,
जी
उसके प्रत्येक पक्ष में पतन परिलक्षित होता है
बिल्कुल बिल्कुल ठीक
और लंबे समय तक चलती है। तो संस्कृति में सम्मिलित तत्व विस्मित होने लगते हैं अपनी संस्कृति के,
जी
और जो शासक वर्ग होता है वो
जी
उन्हें गुलाम बना करके अपनी संस्कृति थोपते हैं।
थोप देते हैं बिल्कुल ठीक यही हुआ हमारे साथ
हमारे देश में यही हुआ है।
जी
तो ये मतलब जोड़ों की स्थिति भी उन्हीं की वजह से आती है।
लेकिन क्या मैम हम लोग के साथ हुआ है और अब इतने वर्ष हो गए हैं उस गुलामी से निकले लेकिन अभी भी हम गुलामी की मानसिकता में अभी भी जी रहे हैं और कोई भी चीज होती है ना उसका दोष हम अपने अपने मतलब अपने धर्मों अपने धर्म पर और अपने जितने हमारे ग्रंथ हैं उन पर देने लग जाते हैं। अभी आप इस बात की भी आपने इतनी चर्चा की और हमें पता चला कि पाश्चात्य देशों में बल्कि इस वर्ग की हालत जो है वो अच्छी नहीं है और हमारे समाज में इनको अच्छा माना जाता था पुराने समय में। लेकिन अगर आप बात करेंगे तो यही दोष दिया जाएगा कि हमारे ग्रंथों में ऐसा था हम पीछे रह गए हमने इन चीजों को पीछे कर दिया। मतलब आप ये जो ट्रांसजेंडर की बात होती है तो उसमें हमारे ग्रंथों को ही हमने देखा है लोग दोष देते हैं ये मैंने कई लोगों से बात की तो मुझे पता चला। आज आपने इस विषय में हमें बहुत अच्छी जानकारी दी कि बल्कि उस समय तो हालत अच्छी थी और प्रमाण
हाँ
दिया
हाँ
आपने
मैंने अरे
जी।
भाई मैंने शशि थरूर की किताब पढ़ी, मैं हिंदू क्यों हूँ,
हाँ जी बिल्कुल
उन्होंने बहुत कुछ लिखा हुआ है इस बारे में
बहुत जी
और बहुत मतलब ये सारी चीजें। इसी तरह एक और मैंने एक किताब पढ़ी, उसमें भी उन्होंने सारे आंकड़े दे दे करके लिखा हुआ है कि
जी
अंग्रेजों ने भारत को किस तरह लूटा
जी
और किस तरह भारत की जनता जब अंग्रेज गए कहा तो भारत की हिस्सेदारी विश्व व्यापार में बहुत अच्छी थी,
जी
30-40% तक,
जी
25-30-40, और जब अंग्रेज गए तो 2% रह गई थी विश्व व्यापार
बताइए
भारत की हिस्सेदारी। सारे यहाँ के उद्योग धंधे सब कुछ खत्म कर दिए अंग्रेजों ने,
जी
कुछ
सबसे
नहीं
ज्यादा
करना।
हमारी संस्कृति को जो आघात पहुंचा मैम बिल्कुल
फिर वो मानसिकता वैसी बन गई ना, उन्होंने जिस तरह से व्यवहार किया तो लोगों को लगता था कि अरे ये तो ज्यादा असभ्य है, हम तो असभ्य है, हम ये है, हमें तो कुछ आता नहीं।
जी
बस तो फिर वो लोगों की मानसिकता वैसी बन गई और आज तक भी अभी वो मानसिकता खत्म नहीं हुई है।
नहीं हुई है
लेकिन फिर भी अब जागृति आनी शुरू हुई है तो लोगों को, पहले तो बीच में तो ऐसा हो गया था कि विदेशों में भी जो भारतीय रहते थे उनको शर्म आती थी अपने को इंडियन कहने में,
जी
आज वो भारतीय गर्व से सिर ऊंचा करके चल रहे हैं
जी बिल्कुल
क्योंकि भारत की बहुत सी चीजें अब विश्व के सामने आई हैं
जिनको
कि
हमने
भारत।
त्याग दिया उनको पूरे विश्व के लोग अपना रहे हैं अब उनको अपनाने में हम गर्व महसूस कर रहे हैं पहले हमने
हाँ गर्व
त्यागा
समझ
लेकिन
में आ
अब
रहा था
जी
कि
बिल्कुल
भारत तो एक सभ्य देश था, यहाँ पे सभ्यता बड़ी अच्छी थी उस
जी।
तरह से।
एक हमारा
और
सबसे बड़ा दोष मैम ये है ना कि कोई भी चीज होती है तो हम सारा दोष जो है वो अपने धर्म पर अपनी संस्कृति पर अपनी सभ्यता पर इन पर डाल देते हैं सबसे बड़ी हमारी कमी ये है
अच्छा एक चीज और भी है ना कि हमेशा सभी में
जी
क्या वहाँ विदेशों में ये पश्चिम में इंग्लैंड में ब्रिटेन यहाँ सब भी इनके यहाँ भी क्या गुलाम नहीं रहे क्या,
बिल्कुल
इनके यहाँ भी खूब रहे हैं
बिल्कुल
गुलाम
है जी
है? हमारे यहाँ भी थे। हर देश में वर्ग तो सब जगह बने हुए होते हैं, चाहे वो अर्थ के आधार पे हो मतलब पैसे के आधार पे चाहे किसी भी आधार पे,
जी
तो और हर एक में मनुष्य कभी पूर्ण नहीं होता, जब मनुष्य पूर्ण नहीं है तो उसका समाज कैसे पूर्ण होगा,
बिल्कुल
कुछ ना कुछ कमियां तो हर समाज में होती हैं।
जी
और ये भी होता है कि धीरे धीरे कोई बहुत सी चीजें धीरे धीरे जैसे हमारा शरीर जर्जर होता है उसी तरह समाज भी जर्जर होना शुरू होता है,
जी जी
समाज परंपराएं जो है वो भी गहर होती हैं, तो उनमें और बुराइयां आ जाती हैं
जी।
तो ऐसी भारत में भी आई, ऐसे थोड़ी है कि हमारे यहाँ में ये, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि, मैं ये भी नहीं कहती कि हमारे यहाँ कोई बुराइयां नहीं थी। हमने भी बहुत अमानवीय व्यवहार किया, पर मैंने कई जगह पढ़ा है कि ये जो जाति परंपरा है, हमारे यहाँ कोई जातिवादी लगाता नहीं था ऐसे
जी।
जो जिसने जो काम कर लिया वो उस जाति का हो गया। जब अंग्रेजों ने जनसंख्या वो गिनती करनी शुरू करना की ना
जी,
और जब नौकरियों वोकरियां देने की बात आई तो उन्होंने जातियां लगा लगा के, जातियां पूछ पूछ के, जातियां लगा लगा के, तब जातिवाद को बहुत बढ़ावा
जी। बिल्कुल
सब ऐसे, ये जो अंग्रेजी शासन है ना, उसने कुछ चीजें ठीक है, कुछ तो हर उसमें कुछ के कुछ पॉजिटिव होते हैं तो कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक,
बिल्कुल बिल्कुल।
लेकिन अंग्रेजी शासन काल जो है वो हमारे देश के लिए बहुत ही नकारात्मक शासन रहा है
जी जी।
क्योंकि धीरे धीरे वो सभ्यता सब चीजें धीरे धीरे भारत में भी आती, भारत का व्यापार था तो भारत के लोग सब जगह जाते आते
जी। बिल्कुल ठीक कहा मैम आपने। अभी कम से कम हम थोड़ा सा समझ जाए इन बातों को और अपनी संस्कृति को थोड़ा हम देखें, अध्ययन करें, कुछ अपने ग्रंथों का उनके आधार पर कुछ समझें।
हाँ धीरे धीरे सजगता तो काफी आ रही
जी,
है धीरे धीरे। अब ऐसा है ना कि इतने सालों की शताब्दियों की जो का अंधेरा है वो धीरे धीरे ही दिखेगा ना
जी। बिल्कुल,
मैं तो बहुत आशावादी हूँ और मैं मानती हूँ, हालांकि मेरी तो उम्र अब बहुत हो गई और पता नहीं हम अपनी उम्र में कितना क्या देख पाएंगे, अब कब तक जिएंगे, लेकिन मैं आशावादी हूँ कि धीरे धीरे हमारा भारतीय समाज भी।
नहीं नहीं मैम, आपकी कुछ बातें इतनी ऐसी जिनसे मैं प्रेरणा लेती हूँ। एक तो आपका आशावादी दृष्टिकोण, आप हमेशा हंसते रहते हैं और इतनी अच्छी बातें बताते हो आप, और सबसे ज्यादा तो इस विषय पर बात करने के लिए, मतलब कई बार पहले मैं सोचती थी कि होनी चाहिए इस पर चर्चा, और जब मुझे पता चला कि किन्नर गाथा आपकी इतनी अच्छी पुस्तक और इतनी प्रसिद्ध हुई, वो तो इस पर चर्चा करने का, चुभन पर आपको आमंत्रित करने का हमने जैसे ही आपको कहा और आपने आकर इतने खुले दिल से हमको सब बताया, मैम आपका बहुत बहुत आभार। और मैं अपने श्रोताओं को भी कहना चाहूंगी कि आपकी इस पुस्तक को अवश्य वो मंगाएं और पढ़ें, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ बात की है, उसकी छोटी सी एक आउटलाइन हमको मिली, और अगर हम उसको पढ़ना चाहते हैं तो पूरी किताब पढ़ेंगे ही तो हमको इस विषय में पूरी जानकारी मिलेगी।
हाँ इतनी, मतलब मुझे लगता है कि थोड़ी ऐसे पढ़ने में इतनी उबाऊ नहीं होगी किताब
जी। नहीं बिल्कुल नहीं मैम, उबाऊ कैसे होगी जब बातें इतनी, क्योंकि बड़ा क्या कहा जाए, जैसा आपने कहा कि इस विषय पर चर्चा ही नहीं हुई, तो एक नया विषय है कह लीजिए।
बिल्कुल, और आप अगर उनके बारे में पढ़ेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी
जी।
अभी तो बिल्कुल बंद है आंखें सबकी।
बिल्कुल बिल्कुल,
आंख खुलने वाली पुस्तक है
जी। बिल्कुल
पढ़ी जाए तो, और फिर एक समाज के इतने बड़े तबके को, मतलब जिसको हमने इतना तिरस्कृत कर रखा है
जी,
जिसको हम इतनी हे दृष्टि से देखते हैं
जी,
उसका भी सम्मान बढ़ेगा, और हमें बहुत से जो, मतलब उनके जितने लाखों लोग हैं उनकी जो क्षमताएं हैं उनका लाभ भी समाज को मिलेगा